राजा असित भीष्म को नाम विदर्भ अधिपतिर महान तस्य पंचाभवन पुत्र कन्यका च वरानना। एक थे राजा, उनका नाम है राजा भीष्मक, विदर्भ के राजा थे वे, 5000 वर्ष पूर्व की बात है। तस्य पंचाभवन पुत्र, 5 पुत्र थे राजा भीष्मक के। कन्यका च वरानना, वर आनना, सुंदर मुखमंडल वाली एक पुत्री भी थी उनकी। 5 पुत्र थे रुक्म अग्रजा, रुक्म रथ, रुक्म बाहु, रुक्म केश, रुक्म माली, उनके 5 नाम हुए। और पुत्री रुक्मिणी है, रुक्मिणेशाम स्वसा सती। सोपसृत्य मुकुंदस्य रूपवीर्य गुणाश्रियः गुहा गतैर गीयमानास्तम मेने सद्रशं पतिम। सुदेव गोस्वामी रुक्मिणी का परिचय दे रहे हैं। उपसृत्य मुकुंदस्य, मुकुंद के बारे में खूब सुना करती थी ये रुक्मिणी। मुकुंद का रूप वीर्य गुण श्रिय, उनका सौंदर्य, उनका वीर्य पराक्रम आदि आदि। जब एक ही बार नहीं, कई बार सुनने का अवसर, सुअवसर प्रदान हुआ था रुक्मिणी को, आगतैर गीयमानास्तम, ऋषि मुनि परिव्राजकाचार्य, अरे वे द्वारका से आते थे, कुंडीनपुर की बात है, विदर्भ में। विदर्भ जानते आप लोग, हाँ कि ना? नहीं, कभी नहीं सुना नाम, या तो विदर्भ राज्य बनाने की बातें हो रही है। विदर्भ क्या नागपुर है, जहाँ अमरावती है, जहाँ खानदेश, ये कई सारे जिले हैं, वो प्रदेश विदर्भ आज भी उसी नाम से जाना जाता है। और सुखदेव गोस्वामी के मुखारविंद से विदर्भ का नाम निकला है। तो ऋषि मुनि आते थे, महात्मा आते थे, द्वारका से आते थे, द्वारकाधीश की सारी गाथा कथा सुनाते थे राजा भीष्मक को। राजा जब सुनते थे भगवान की गाथा तो कुछ कम उम्र वाली रुक्मिणी भी वहाँ बैठे बैठे सुना करती थी भगवान के यशोगान। सुनते सुनते मैंने सदृशम पतिम, उसने तय कर लिया, हरी तब मैंने सदृशम पतिम, मेरा विवाह अगर होगा तो किसके साथ? कृष्ण के साथ ही होगा। इतनी आसक्त हुई रुक्मिणी प्रभु से केवल श्रवण मात्र से, कभी नहीं मिली, देखी नहीं थी कभी उस प्रभु को। सुन सुन के उनके चरणों में अनुराग उत्पन्न हुआ और संकल्प हुआ, मैंने सदृशम पति हो तो ऐसा कृष्ण जैसा। ऐसा संकल्प जब रुक्मिणी ने किया है, वैसा ही संकल्प अब द्वारका में द्वारकाधीश करेंगे तो कई सारे तीर्थ यात्री कुंडीनपुर से राजा भीष्मक को मिलके और रुक्मिणी को भी देखा करते थे। उसका कितनी बुद्धिमान है, ताम बुद्धि लक्षण औदार्य उदारता रूपशील गुणाश्रयाम कृष्णस्य सदृशीं भार्याम समद्वोढुं मनोदधे। और वहां द्वारका में भी उन्होंने निश्चय किया, सदृशीं भार्याम, भार्या हो पत्नी हो तो ऐसी रुक्मिणी जैसी। बंधुनाम इच्छताम दातुम कृष्णाय भगवनीम नृप। पांच बांधों में से, बंधुओं में से चार बंधु तो तैयार थे। हाँ हाँ, बहुत सुंदर बात है, हम प्रसन्न हैं इस बात से। हे रुक्मिणी, जो तुम श्री कृष्ण का वरन की हो। ततो निवार्य कृष्ण द्विज रुक्मी, लेकिन रुक्मी बड़ा विघ्न था क्योंकि कृष्ण का द्वेष किया करता था, द्वेषी था, और उसने विचार किया, मेरे बहन के लिए वो शिशुपाल है ना, शिशुपाल वो बढ़िया पति होगा। अरे बाबा, आपको बात कैसी अच्छी लगी? आपकी ओर से एक ने तो कहा नहीं, आप यहां हो ना सब। तद अवेत्य असिता अपांगी वैदर्भी दुर्मना भृशम। तो अपने भाई रुक्मी का प्रस्ताव जान के सुन के वैदर्भी, विदर्भ की रुक्मिणी, इसीलिए रुक्मिणी का दूसरा नाम है वैदर्भी। लॉर्ड हरि बोल, बहुत दुखी हुई, भ्रशम दूरमना, अत्यंत दुखी हुई। विचिन्त्य आप्तम द्विजम कश्चित कृष्णाय प्राहिणोद्रुतम। खूब सोच विचार करके उसने एक विश्वसनीय ब्राह्मण को द्वारका भेजी, Yeah, Haribol. I don't even need it. It's too much. Yeah. Hare Krishna. तो रुक्मिणी का संदेश लेके ये ब्राह्मण द्वारका पहुंचते हैं। द्वारकां स समभीत्य प्रतिहारै प्रवेशितः द्वारका धाम की। द्वारका में वहां पहुंचे। अब उस प्रासाद महल के समक्ष है, इस प्रासाद में द्वारकाधीश निवास करते हैं। प्रतिहारे द्वारपालों ने द्वारपाल ले गए इस द्विज ब्राह्मण को इस प्रासाद में। अपश्यद् आद्यं पुरुषम आसीनम कांचनासने। अब ब्राह्मण आगे देखते हैं तो सामने ही द्वारकाधीश श्री कृष्ण बैठे हैं। आद्यम पुरुषम, कैसे है द्वारकाधीश? आदि पुरुष है। आद्यम पुरुषम आसीनम, आदि पुरुष को बैठे हुए देखा। कहाँ बैठे हैं? कांचन आसन में, सिंहासन पर बैठे हैं, जो कांचन सोने का और रत्न जटित सिंहासन पर विराजमान है द्वारकाधीश। दृष्ट्वा ब्रह्मण्य देवस तम अवरुह्य निजासनात्। या द्वारकाधीश श्री कृष्ण तो एक उपाधि या नाम दिया जा रहा है। कैसे है? ब्रह्मण्य देव, ब्रह्मण्य देव, भगवान जो ब्राह्मणों की उपासना करते हैं, ब्राह्मणों के पूजक उपासक श्री कृष्ण जब देखे कोई द्विज वर ब्राह्मण प्रवेश कर रहे हैं, अवरुह्य उठ के खड़े हुए, निज आसनात् उपवेश्य अर्हन् चक्रे यथा आत्मानं दिवौकसः। और उसी आसन पर, अपने आसन पर उस द्विज को बिठाए और उस ब्राह्मण की वैसी ही पूजा अर्चना किए जैसे दिवौकसाम, स्वर्ग के देवता भगवान की जैसी आराधना पूजा करते, वैसे ही प्रभु ने ब्राह्मण की आराधना पूजा की। तम भुक्तवंतम विश्रांतम उपगम्य सताम गति ही। तो कुछ भोजन आदि की व्यवस्था, विश्राम भी हुआ। फिर प्रभु पुनः उस ब्राह्मण के पास पहुंचते हैं, उनके चरणों की सेवा, पाद संवाहन प्रारंभ होता है। संतुष्टो यर्हि वर्तेत ब्राह्मणो एन केनचित। कुशल मंगल तो हो ना, सेवा भी कर रहे हैं, पूछताछ भी हो रही है। विप्रान स्व लाभ संतुष्टान साधुन भूतसुरुत्तमान निरअहंकारिणः शांतान नमस्से शिरसा असकृत। भगवान के ऐसे ब्राह्मणों को, आप जैसे ब्राह्मणों को नमस्ते, मैं नमस्कार करता हूँ, शिरसा नमामि, असकृत पुनः पुनः मैं मेरा वंदन वंदना नमस्कार। और ब्राह्मणों का कैसे, ब्राह्मणों को भगवान पूजते हैं नमन करते हैं, स्वलाभ संतुष्ट जो संतुष्ट है यदृच्छा लाभ संतुष्टो, भगवान ने जो भी व्यवस्था की है सुविधा दी है उसमें संतुष्ट है जो विप्र जो ब्राह्मण। साधुन भूत सुरुत्तमान और सब जीवों के जो से मित्रता जो रखते हैं ब्राह्मण, निरहंकारिणा और जिन 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 ब्राह्मणों में अहंकार नहीं है जो नम्र है, विद्या विनय संपन्ने, कैसे विद्या से संपन्न और साथ ही साथ विद्या विनय संपन्ने, विद्या और विनय संपन्न ब्राह्मण, शांतान और जो शांत स्वभाव के है नमस्ते, ऐसे ब्राह्मणों के चरणों में मैं झुकता हूँ प्रभु ब्रह्मण्य देव, भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश कह रहे हैं। कश्चिद्वा कुशलं ब्रह्मन् राजतो यश्च हि प्रजाः सुखं वसन्ति विषये पाल्यमाना समे प्रियः। और जहाँ तक ये ब्राह्मण की बात हुई, अब जहाँ तक राजा की बात है, ब्राह्मण फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र ऐसे समाज के विभाजन होता है, तब राजा के बारे में क्षत्रियों के बारे में कहते हैं कश्चिद्वा कुशलं ब्रह्मन् राजतो यश्च हि, जिस राजा की प्रजा कुशल मंगल रहती है, सुखम वसति विषये, और उस देश में वहाँ की प्रजा सुखी है, पाल्यमानः और सुरक्षित है राजा से, राजा रक्षा कर रहा है, क्षत्रिय क्षत क्षत क्षतात् त्रायते इति क्षत्रिय कहा, क्षत मतलब कोई कोई कष्ट होना या कोई हानि कोई या जख जखम होती है कोई ऊन ऊन इंग्लिश में कहते हैं, तो ऐसे कष्टों से क्षति से जो रक्षा करता है उस व्यक्ति को राजा या क्षत्रिय कहते हैं, क्षत्रिय कहते हैं। समय प्रिय, ऐसा राजा मुझे अति प्रिय है, भगवान कह रहे हैं। यतस्व त्वम आगतो दुर्गम निस्तीर्ये यदिच्छया, ए विप्रवर आप तो बहुत दूर से आए हो, कहा कुंडिनपुर विदर्भ और कहा हमारा ये द्वारका, बहुत दूर का ये पथ दुर्गम पथ पर आप चल के ही आए हो। सर्वं नो ब्रूहि गुह्यम चेत किम कार्यम करवामते, अगर आप समझते हो कि आप का संदेश उतना गोपनीय नहीं है या आप मुझे आप कहना चाहते हो तो कहिए किम कार्य, और आपकी मैं क्या सेवा कर सकता हूँ, क्या आदेश है मेरे लिए, किम कार्यम करवामते करवामते। तो इस प्रकार प्रभु ने जब जिज्ञासा की तो उस विप्रवर ने सर्वम वर्णयत, सब समाचार कहे सुनाया सुनाने लगे। सर्वप्रथम तो हम क्या कर सकते हैं, तो हुआ जिस उद्देश्य से वे आए थे, रुक्मिणी के संदेश वाहक बन के आए थे, तो झट से उन्होंने रुक्मिणी का पत्र जो पुनः रुक्मिणी अपने अपने हाथ से लिखा हुआ हैंड रिटन इसको पढ़ के सुनाने लगे ब्राह्मण। रुक्मिण्युवाच, देखो कैसी व्यवस्था है, रुक्मिणी ने लिखा हुआ पत्र आज भी हम पढ़ सकते हैं, कैसा फाइल करके रखा है, महत्वपूर्ण लेटर होगा, पत्र होगा वो। और उन्होंने भी कई पत्र लिखे होंगे 5000 वर्ष, यानी कि रुक्मिणी ही लिखना पढ़ना जानती थी और सारे निरक्षर थे, और लोग भी लिखते थे, लेकिन उन सभी पत्रों में ये पत्र, ये संदेश महत्वपूर्ण, और हमारा भी कुछ कल्याण होगा इस पत्र के संदेश में या वर्णन में। इसीलिए सुखदेव गोस्वामी इसको कहे हैं, और श्रील वेद व्यास अपनी श्रीमद् भागवत की रचना में इसको लिखे हैं। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्वकर्ण विवरै हरतो अंगतापम्। मैं तो बचपन से ही श्रुत्वा सुन रही हूँ गुणान, आपके गुण की गाथा, हे भुवन सुंदर, और कर्ण विवरय, सुनी हुई बातें जब प्रवेश करती है मेरे कर्णों में, वहाँ से जब हृदय प्रांगण में पहुँचती है, तो एक तो मेरे चित्त को हर लेती है और साथ ही साथ मेरे अंग ताप को भी। रूपम दृशाम दृशिमताम अखिलार्थ लाभम त्वयि अच्युता विशति चित्तम अपत्रतम अपत्रपम में। ऐसे कहते कि मेरा मन आप में के चरणों में आसक्त है, अनुरक्त है, आप में प्रवेश करता है मेरा मन, और ये कहते हुए मुझे ये लज्जा छोड़कर या मेरी लज्जा छूट जाती है। मैं जब आपके संबंध के वचनों को श्रवण करती हूँ और मेरा मन आप में प्रवेश करता है, मैं आपके संबंध की बातें भी कहना प्रारंभ करती हूँ, लज्जा को छोड़ के। कात्वा मुकुंद महत, आप जैसा कौन है इस संसार में, जहाँ तक कुल की बात है, शील की बात है, सौंदर्य की बात है, विद्या की बात है, और उम्र की बात है, और द्रवीण धन की बात है, आत्मतुल्यम, आप जैसा तो कोई नहीं, आप अतुलनीय हो, अतुल कृष्ण कहते हैं। भगवान के एक नाम क्या है, कैसे कृष्ण, अतुल अतुल अतुलनीय, जिनकी तुलना और किसी से नहीं हो सकती। मत्तः परतरम न अन्यत, भगवान गीता में मत्तः परतरम न अन्यत किंचित अस्ति धनंजय, मेरे बराबर का कोई नहीं है, न तो मुझसे कोई ऊंचा है। सम असमो ऊर्ध्वम, असम भगवान जैसा समकक्ष कोई नहीं, ऊर्ध्वम ऊपर वाला भी कोई नहीं है। तो रुक्मिणी वही बात यहाँ लिख रही अपने पत्र में, तो आप ही कहिए हे भुवन सुंदर, आप जैसे अतुलनीय, आप अतुल कृष्ण हो। तो धीरा पतिम कुलवती न व्रणीत, कौन कन्या है जो कुलवती स्वयं हो, और काले उसका समय आ चुका है, विवाह का समय आ चुका है, तो आप जैसे व्यक्ति का वो वरण नहीं करेगी, स्वीकार नहीं करेगी, ऐसी तो कोई स्त्री नहीं हो सकती, क्योंकि आप अतुलनीय हो। और अभिराम अभिरामम आप आनंद देने वाले हो, नयनाभिरामम आँखों को भी आनंद देने वाले हो। तन्मे भवान खलु वृत्तः पतिरंग जायात आत्मार्पितश्च भवतोत्र विभो विधेहि। मेरा स्वीकार कीजिए प्रभु, मेरे द्वारा आप चुने गए हो, मेरा स्वीकार कीजिए। मैंने आपको मन ही मन में समर्पित किया है और देखना कि वो सियार और जो शिशुपाल है उसका सियार, वो सियार मुझे स्पर्श न कर पाए। आगे लिखती है रुक्मिणी, मैंने अगर कोई दान दिया है, मैंने अगर कोई धार्मिक विधि विधानों का पालन किया, कोई व्रत किया है, कोई विप्र गुरुजनों की आराधना पूजा की है, तो ऐसे सारे धार्मिक कृत्यों का फल प्रभु मुझे अब चाहिए। इस सब के बदले में अगर आप मुझे मिल सकते हो तो आप आइए, हे गदाग्रज एत्य आप आकर पानीम गृह्णातु, पानी ग्रहण करें, मुझे स्वीकार करें पत्नी के रूप में। और न दम घोष सुतादयो अन्य, न कि दम घोष के पुत्र शिशुपाल थे, इनको दूर रखना है आपको। और कहते आपको कब आना होगा, ये नहीं कि अब कुछ वर्षों के बाद की, नहीं अब दो दिन में मेरा विवाह है। विवाह कब होगा, अब परसों ही, स्व परसों, आपको कल आना है। तो वो कहती है दो दिन में मेरा विवाह है लेकिन आपको एक दिन पहले ही आना होगा। और गुप्त रूप से आप आइए, राक्षसेन विधि विधिनोद्वह वीर्यशोकाम। तो बलपूर्वक प्रसय बलपूर्वक इन अन्य राजा महाराजाओं के मध्य में से मुझे ले चलो और मेरा स्वीकार करो हे प्रभु। रुक्मिणी बड़ी कुशल है, बुद्धिमान है। वो लिखती है कि शायद आप सोचोगे कि मैं तो महल में रहूंगी, तो तुमको मुझे अगर ले जाना है तुम्हें तुम्हारे घर से, तुम्हारे नगरी से द्वारका ले जाना है, तो मैं जब आऊंगा तो तुम तो घर में रहोगी, महल में रहोगी, और मुझे आते हुए देखेंगे घर वाले और भी राजा महाराजा, तो वहाँ विरोध होगा, कुछ खून खराबी हो सकती है, ऐसे आप सोचते होंगे। लेकिन मेरी एक युक्ति है, मेरा एक विचार है प्रभु। तो वो कहती है कि तो मीटिंग पॉइंट कहाँ हम मिल सकते हैं, बड़ी चालाक है। हाँ आपको घर में मिलने की आवश्यकता है, मैं समझती हूँ घर में तो आप आके तो फिर बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। तो हमारे कुल में परिपाटी है, दुल्हन विवाह जिस पुत्री का होना है वो अंबिका के मंदिर में जाती है, कुल देवी की पूजा अर्चना करने हेतु। और फिर तो मैं भी जाऊंगी, कल जाऊंगी मैं, परसों विवाह है एक दिन पहले, तो मैं जब मंदिर से लौटूंगी घर की ओर जब मैं जा रही हूं उस वक्त आप आ जाना और मुझे ले जाना प्रभु। यस्यांग्रि पंकज रसा रजह स्नपनम महांतो। तो मैं आपको खूब चाहती हूँ क्या, और कोई है नहीं मेरे मन में, और कोई पर्याय है नहीं, लेकिन किसी कारणवश अगर आपने मेरा स्वीकार नहीं किया तो व्रत द्वारा इस शरीर को सुखाकर मैं अपना प्राण त्याग दूंगी और फिर देखा जाएगा, और किसी भविष्य के जन्मों में आप मेरा स्वीकार करने के लिए तैयार होंगे। मैं रुक सकती हूँ, लेकिन मैंने तो आपका स्वीकार किया हुआ है पति के रूप में, मैं आपकी प्रतीक्षा में हूँ। तो इसी जन्म में अगर आप स्वीकार करोगे मेरा, तो मेरा अपना जीवन धन्य मानूंगी। ये रुक्मिणी का पत्र है, संदेश है द्वारकाधीश श्री कृष्ण के चरणों में, निवेदन है। ब्राह्मण उवाच इत्येते गुह्य संदेश यदुदेव मयारितः विमृश कर्तुम यच्चात्रो क्रियताम तदनंत। हाँ, ये संदेश मैंने, आपने पूछा था मैं क्या कर सकता हूँ, तो अब इस पत्र से स्पष्ट ही है आप क्या कर सकते हो। तो इस पर विचार कीजिए और जो भी करना है कैसे करना होगा फटाफट। इस समय वो बेला निकट आ रही है, तो सुखदेव गोस्वामी या कमेंट में कहते हैं, जब इस वैदर्भी के संदेश को यदुनंदन सुने, प्रग्रह्य पानिना पानिम, झट से उस ब्राह्मण के हाथ अपने हाथ में लिए, मतलब हम सम्मत, हाँ हम तैयार हैं, स्वीकृति अगर प्रकट करनी तो हम व्यक्ति का हाथ शेक हैंड कर, वैसे विदेश में ऐसा होता है, एक हाथ एक हाथ, हमारे कल्चर में दोनों हाथ पकड़ते हैं, दोनों हाथ, हाँ हाँ बात पक्की है, हाँ यस, विदेश में ये भी चलता है थम्स अप। और प्रसन्न हो के प्रसन्न इदम अब्रवीत, बड़ी प्रसन्नता पूर्वक यदुनंदन कहे, तथा अहमपि तच्चित्तो निद्रा च न लभे निशि। ऐसी बातें हैं, जैसे रुक्मिणी कह रही थी मुझे तो, मैंने तो लज्जा छोड़ दी, तो यह द्वारकाधीश भी सारी लज्जा को छोड़ के कह रहे हाँ 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 हाँ, अरे ब्राह्मण क्या कहूँ, अरे मेरी स्थिति भी तो वैसी ही है। तत्चित्त, मेरा चित्त भी किसमें लगा हुआ है, रुक्मिणी में लगा हुआ, तत्चित्त, जैसे उसने अपने पत्र में लिखा है उसका चित्त मुझ में लगा है, लेकिन मेरी स्थिति तो कुछ भिन्न, मेरी स्थिति वैसी है, मेरा चित्त तो रुक्मिणी में ही लगा है। और इतना ही नहीं, निद्राम च न लभे निशि, रात्रि को मुझे नींद भी नहीं आ रही, यहाँ तो बढ़िया डनलॉप के बेड्स वगैरह है द्वारका में, डनलॉप से भी, हम तो डनलॉप को बढ़िया समझते हैं, लेकिन डनलॉप की ओर तो देख के थूकते हैं, वहाँ द्वारका में कौन पूछता डनलॉप को, हाँ वहाँ का मटेरियल तो और भी है, और ही है। तो लेटते तो प्रभु है, लेकिन नींद नहीं आती, मैं केवल जो भी दिन में सुना करता हूँ रुक्मिणी के संबंध में, आज कोई महात्मा आए और कभी और कई किसी समय आए कुंडीनपुर से, विदर्भ से, तो वो सुनाते रहते हैं रुक्मिणी की गुण गाथा। और फिर रात्रि के समय उसे नींद भी नहीं आती है। लेकिन मैं जानता हूँ वेद अहम रुक्मिणा द्वेषात निवारिता। हाँ 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 हाँ, समस्या तो वो रुक्मी है जो मुझसे द्वेष करता है, लेकिन कोई समस्या नहीं है, मैं तैयार हूं। सो विवाह तो परसों ही होना है, मान के समझ के इस बात का ख्याल रखते हुए भगवान दारुक, दारुक 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 कौन है? चैरियट ड्राइवर, रथ के सारथी है, भगवान के रथ के सारथी दारुक। दारुक को बुलाए, संयुज्यताम रथः आशु, मेरा रथ तैयार करो। तो रथ तैयार है, यस हुजूर, रथ तैयार है। तो सुखदेव गोस्वामी कहते जिस रथ, जो रथ तैयार है उसमें चार घोड़े रथ खींचेंगे, उनके नाम है शैव्य नाम का एक घोड़ा है, सुग्रीव मेघ पुष्पक बलाहक, और कौन उनके अलग अलग घोड़ों के अलग अलग रंग भी दिए हैं, कोई कल्पना नहीं है ये। जैसे घटना घटी वैसे ही कितने घोड़े खींच रहे थे और कौन कौन से भिन्न भिन्न वर्णों के रंगों के वो घोड़े थे, उनके नाम कौन कौन से थे, और क्या जानना चाहते हो आप? आरुह्य शंदनम शौरीर द्विजम आरोप्य तूर्ण गई। तो प्रभु बैठे चंदनम उस रथ में, और द्विज उस ब्राह्मण को भी बिठाए, और आनर्ताद एक रात्रेन विदर्भा आगमनम हयै, बड़े तेजी से घोड़े रात भर दौड़ रहे थे, सायंकाल को प्रस्थान किए द्वारका से, अब प्रातःकाल पहुंच गए विदर्भ में, तूफान की तरह से आग ट्रेन चलती है, आग गाड़ी। तो इनका रथ उतने ही गति से जा रहा था और पहुंच भी गया। राजा सकुंडिन पति पुत्र स्नेह वशम गतः शिशुपालाय स्वाम कन्या दास्यम कर्मान्य कारयत। तो राजा कुंडिनपुर के पति भीष्मक पुत्र स्नेह वशम गता, समस्या थी पुत्र से स्नेह, फिर उससे वशीभूत होके तैयार होना पड़ा, मजबूरी है, शिशुपाल को अपनी कन्या देने के लिए तैयार। जैसे धृतराष्ट्र भी दुर्योधन से जो उनका स्नेह था उससे वशीभूत हो के ऐसे कई सारे कृत्य किया करते थे, जिन कृत्यों से वे स्वयं सहमत नहीं हुआ करते थे, वैसी बात पुत्र स्नेह वशम गता ये सब हो रहा है। कर्माणी सारे कार्य तैयारी चल रही है, पहले तो सारे नगरी को ऐसा साफ सुथरा किए हैं, स्वच्छ किए हैं, समृष्ट संसिक्त मार्ग रथ्या चतुष्पदम, स्वच्छता हुई है और छिड़काव हुआ है जल का, ध्वज पताका तोरणई समलंकृतम, शोभायमान नगरी शोभा बढ़ा रहे हैं। माल्यभरण अंबर भूषित और श्रीमद अगुरु नाम का धूप होता है, उसका सुगंध फैला हुआ है और स्त्री पुरुष विशेष माला धारण किए हुए हैं, आभरण आभूषण पहने हुए हैं, अंबर भूषित विशेष नए वस्त्र पहने हुए हैं। तो सारे नगर, सारे लोग, स्त्री पुरुष सब सजे हैं, सज्ज है, तैयार है या तैयारी हो रही है। विप्रांश विधिवत नृप, तो विप्राय ब्राह्मण आए हैं, भोजयित्वा ब्राह्मण को क्या अच्छा लगता है, भोजन, पहले भोजन खिलाए, उसमें भी क्या होना चाहिए, मिष्टान्न होना चाहिए। कौन सा मिष्टान्न, लड्डू होने चाहिए। ऐसी सारी व्यवस्था, ये ऐसी व्यवस्था भी है। और वाचया मास मंगलम, और मंगल गान हो रहा है, मंगल गान भी करो थोड़ा,
मंगल
समाधान मंत्रस
ओम पुनन्तु माम देव जनाः पुनन्तु मनसद्यः पुनन्तु विश्वभूतानि जातवेद पुनीहि माम ओम सकर्मणः पुण्यः भवन्तु ब्रुवन्तु ओम पुण्यः मोम पुण्यः मोम पुण्यः ओम स्वस्ति नो इन्द्रो वितस्वाः स्वस्ति नो पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु ओम सकर्मण ऋद्धिं भवन्तु भुवन्तु ओम हृद्यताम ओम हृद्यताम ओम हृद्यताम
हृदय गौर प्रेमानंदे हरि हरि हरि। उस नगरी के लोग तो प्रसन्न थे और आप शिशुपाल भी आ रहा है इसलिए आप दुखी हो। यस, तो वाचया मास मंगल, तो मंगल गान और सब ब्राह्मणों को हिरण्य रूप्य वासांसी वस्त्र दिए जा रहे हैं। प्रादाधेनुष्य विप्रेभ्यो, तो गाय दान दी जा रही ब्राह्मणों को। ये जैसे सारी तैयारियां कुंडीनपुर में हो रही है, तो वहां चेदी नाम का जो राज है, जहाँ के दमघोष राजा थे और दमघोष के पुत्र है शिशुपाल, तो वहाँ पर भी मंत्रोच्चारण हो रहा है या दुल्हन की तैयारी हो रही, वहाँ दूल्हे की तैयारी वहाँ हो रही, वहाँ भी मंत्र बोले जा रहे हैं। और अब अलग अलग राजाओं का वह पहुंचना प्रारंभ हो जाता है। सैन्य परितः कुंडिनम ययोग, साथ में कुछ सैन्य भी ला रहे हैं, जा रहे विवाह के लिए लेकिन साथ में सेना लेके आ रहे, क्योंकि समझते हो सकता है कलह शंकितः, अगर कृष्ण वहां आए तो सोचते हैं वहां कृष्ण आने की संभावना तो है, क्योंकि जानते हैं कि रुक्मिणी तो चाहती वैसे द्वारकाधीश कृष्ण के साथ विवाह करना चाहती है, केवल रुक्मी के कारण, रुक्मिणी का भाई रुक्मी के कारण ये विवाह वैसे शिशुपाल के साथ तय हुआ है, लेकिन जहां तक तो रुक्मिणी का प्रश्न है वो तो द्वारकाधीश को ही चाहती, इस ये बात प्रसिद्ध थी। तो ये सारे राजा महाराजा कौन कौन से राजा, जरासंध आ गए, जरासंध हम कल ही मिले थे उनको वैसे बहुत समय बीत चुका है कथा हमने वैसे द्वारका में रहे हैं भगवान रणछोड़, और बलराम जी का विवाह होता है रेवती, रेवती मैया के साथ, रेवती के साथ, वो बड़े भाई है तो इनका विवाह होना चाहिए। तो ये रुक्मिणी हरण और रुक्मिणी विवाह का जो वर्णन है उसके पहले बड़े संक्षिप्त में सुखदेव गोस्वामी बलराम विवाह की चर्चा किए हैं, और फिर अब तो द्वारका में कुछ समय बिताए हैं। तो दंत वक्र भी आ रहे हैं, विदुर रथ आ रहे, शाल्व आ रहे, पौंड्रक आ रहे, पौंड्रक ये सब जरासंध के मित्र मंडली है। तो एक ही माला के मणि सब वहां पहुंच रहे हैं, और सभी ने वैसे संकल्प योत्स्यामः इति निश्चित मानसः, हाँ युद्ध करना पड़ेगा तो हम तैयार है, हम सब मिलके जुट के युद्ध करेंगे कृष्ण के साथ। श्रुत्वे तद् भगवान रामो विपक्षीय नृपोद्यमम् कृष्णम चैकम गतम हर्तुम कन्याम कलह शंकितः। और बलराम जब दूसरे दिन उठे और लोग भी उठे द्वारका में, तो देखते तो कृष्ण नहीं है, तो कृष्ण समझ गए हाँ 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 हाँ, वो एक सबसे बड़ी संभावना तो आज के दिन वहां गए होंगे, कुंडीनपुर गए होंगे। तो बलराम को यह कहा, भ्रातृ स्नेह परिप्लुत, भ्रातृ प्रेम जैसे राम और भरत का प्रेम, या राम और लक्ष्मण ये जो भ्राता उनका प्रेम, वैसे ही कृष्ण बलराम के मध्य का प्रेम, भ्रातृ प्रेम। तो भ्रातृ प्रेम परिप्लुत, अपने भ्राता श्री कृष्ण के प्रति उनका जो प्रेम, उस प्रेम वश त्वरितः कुंडिनम प्रागात, बलराम स्वयं भी प्रस्थान किए कुंडीनपुर के लिए, लेकिन साथ में उस सेना लेके, वे भी सेना लेके जा रहे। कलह कन्याम कलह शंक, कोई उनको भी शंका दिया, झगड़े रगड़े की बात संभव है, तो कृष्ण तो अकेले, कृष्ण कृष्णम च एकम गतम, वो तो अकेले गया। तो बलराम कुछ सेना लेके पीछे पीछे से गए और पहुंच भी गए। नागच्छति अरविन्दाक्षो नाहं वेद्मि अत्र कारणम्। अब वो दिन आया है, अब कल विवाह होगा, आज के दिन अंबिका माता के पूजन का दिन है, अब मुझे तैयार होके देवी के पूजा के लिए प्रस्थान करना ही होगा। लेकिन कहाँ है अरविंदाक्ष, कहाँ है वो पुंडरीकाक्ष, मेरे प्रभु द्वारकानाथ कहाँ है, ना हम वेदमी अत्र कारणम, इसका कारण तो मैं नहीं समझ सकती, क्यों नहीं आए प्रभु। अपि मयि अवनद्यात्मां दृष्ट्वा किञ्चित् जुगुप्सितं मत्प्राणि पाणिग्रहणे नूनं नायाति हि कृतोद्यमः। हो सकता है कुछ अंदाजा लगाने का, कुछ समझने का प्रयास, क्यों नहीं आए होंगे, क्यों नहीं आए। हाँ हाँ हाँ, हो सकता है उन्होंने मुझ में कुछ बुराई देखी होगी, सुनी होगी मेरे संबंध में, और उन्होंने निश्चय किया होगा नहीं नहीं इस ये अच्छी नहीं है। रुक्मिणी, इसीलिए उन्होंने विचार ही छोड़ दिया होगा मेरा, या मेरा पाणी ग्रहण करने का विचार। दुर्भगया दुर्भा दुर्भगाय मे धाता, कितनी अभागी हूँ मैं हे विदाता विधाता, और महेश्वर शंकर कोई भी अनुकूल नहीं है। देवी वा विमुखा गौरी रुद्राणी गिरिजा सती, मेरे पक्ष में तो कोई भी नहीं लग रहा है, कोई भी अनुकूल स्थिति का मैं अनुभव नहीं कर रही हूँ। एवं चिंतयति बाला गोविंद ऋतमानसा, न्यमीलयत् कालज्ञा नेत्रे चाश्रुकला कुले। इस प्रकार चिंता चिंतयति चिंत इस प्रकार चिंता विचार करने करती हुई ये बाला बालिका रुक्मिणी गोविंद ऋतमानसः, अब केवल अधिक और अधिक गोविंद का स्मरण करती हुई। न्यमीलयत कालज्ञा, आंखें बंद की है लेकिन वैसे आंखें डबडबाई, खूब आंसू तो आंसुओं से भरी भरी हुई आंखें, और चिंतन कर रही है, मन ही मन प्रार्थना कर रही है, कब आएंगे गोविंद, कब आएंगे गोपाल, हे कृष्णा हे गोविंद हे गोपाल, आ जाओ प्रभु, कहाँ हो प्रभु, क्यों नहीं आ रहे हो प्रभु। केवल यही विचार कर रही है, गा भी रही है।
Gopal Nandana Krishna Govinda.
पापा।